Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Jai Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande समवेत भक्त वृंद की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए श्री श्री गुरु गौरांग की जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद सोलहवां अध्याय मुनियों द्वारा वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को शाप श्लोक संख्या 10 ये मे तनोः द्विजवरान् दुहतीः मदीयाः भूतानि अलब्ध शरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्ति अघ क्षत दृशः हि अहि मन्यवः तान् गृध्राः रुषा मम कुशन्ति अधिदण्डनेतुः ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो हि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो हि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या शरणानि च भेदबुद्ध्या तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहि मन्यवस्तान् गृधारुषा मम कृशन्त्यधिदण्डनेतुः ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या। द्रक्ष्यन्त्यघक्षत दृशो यहि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कृशन्त्यधिदण्ड नेतुः। ये जो पुरुष मैं मेरा तनुः शरीर द्विजवरान ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ दुहतीः गौवें मदीयाः मुझसे संबंधित भूतानि जीव अलब्ध शरणानि आश्रय विहीन च तथा भेद बुद्ध्या भिन्न मानते हुए द्रक्षन्ति देखते हैं अघ पाप के द्वारा क्षत क्षतिग्रस्त दृशः निर्णय की शक्ति ही क्योंकि अहि सर्पवत मन्यवह क्रुद्ध तान उन्हीं व्यक्तियों को गृधाह गीत जैसे दूत रुषा क्रोध से मम मेरे कुशंती नोच डालते हैं अधिदंड ते नेतु दंड के अधीक्षक यमराज का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ब्राह्मण गौवें तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध रूपों के समान क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीत जैसे क्रुद्ध दूतों को दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता के अनुसार गौवें ब्राह्मण स्त्रियां बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निस्सहाय प्राणी हैं। इन पांचों में से ब्राह्मणों तथा गौओं का इस श्लोक में विशेष उल्लेख है क्योंकि भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के लाभ के विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में वंदित होते हैं। अतएव भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों से विशेषतया गौओं तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भागवत के किन्हीं किन्हीं पाठों में दुहती ही के स्थान पर दुहित्री ही शब्द का प्रयोग मिलता है किंतु दोनों ही पाठों से अर्थ एक ही निकलता है। दुहती का अर्थ गाय है और दुहित्री का भी अर्थ गाय ही हो सकता है क्योंकि गाय को सूर्यदेव की पुत्री माना जाता है। जिस तरह से बच्चों की देखरेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है उसी तरह स्त्री वर्ग का देखरेख पिता पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। जो लोग असहाय हैं उनकी देखरेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे, क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त हैं। यहीं पर यमराज के सहायकों या दूतों की उपमा गीधों से दी गई है, और जो लोग अपने रक्षों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते उनकी तुलना सर्पों से की गई है। गीध सर्पों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुन श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् दद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरहन परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यहां पे भगवान गाय और ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, विशेष करके गायों का। वैसे गायों का गुणगान करने के प्रयास तो हम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक सूचना करने पर हम बाध्य हो रहे हैं, और वो ये है कि आपके मोबाइल फोन कृपया आप बंद कर लीजिए। अभी परीक्षा कीजिए, जांच कीजिए आपका फोन चालू है या नहीं, और जिनका फोन प्रवचन के दौरान बजेगा उनको गायों और ब्राह्मणों की सेवा के लिए 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। तो जिनका फोन बजेगा तो यहां आके कृपया 500 रुपया पहले से रख दीजिए। तो सावधान रहिए, जिनके जेब में बटुए में फोन है सावधान रहिएगा। और ये एक नित्य नियम बनना चाहिए, ये एक अपराध है श्रीमद् भागवत के प्रति और भगवान के प्रति। हमें कीर्तन सुनना चाहिए, ये संगीत सुनना चाहिए, न कि मोबाइल फोन के तरह तरह के संगीत सुनने चाहिए। तो यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि उनमें और गाय और ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं है, कोई पार्थक्य नहीं है। जो ऐसे पृथक दृष्टि रखता है उनके प्रति वो अपराधी है। गाय और कृष्ण में अंतर नहीं है, ना ब्राह्मणों में और गाय में और भगवान में है, इसलिए दोनों को एक ही समान दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान हम सबके लिए पूजनीय हैं, उसी प्रकार से गाय और ब्राह्मण ये भी पूजनीय है। वैसे गाय और ब्राह्मण तो पूजित हैं, ये तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, परंतु विशेष करके वैष्णवों के लिए ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। हर एक वैष्णव तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि वैसे साधन भक्ति के अंतर्गत हमें अश्वत्थ वृक्ष, आमलकी वृक्ष, गाय, तुलसी, ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, ये हमारे लिए सम्मानित और पूजनीय है। और श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में लिखते हैं कि इन छहों में से विशेष करके वैष्णवों के लिए तुलसी और वैष्णव, इनकी सेवा करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अन्य जो हैं, अन्य चारों में से सबसे महत्वपूर्ण गाय है। और वो कहते हैं कि गाय की सेवा करने मात्र से हमें समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और भक्तों को किन तरह की सिद्धियां चाहिए? भक्ति की सिद्धि, कृष्ण प्रेम। तो यदि हम भक्ति भाव से गायों की सेवा करते हैं, उनका श्री कृष्ण से संबंध देखते हुए, तो निश्चित ही शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का उदय हमारे हृदय में हो सकता है। और उसी स्थान में श्रील जीव गोस्वामी पाद गौतमी तंत्र से एक श्लोक कहते हैं, गवाम कंडूयनेन कुर्याद गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम गोषु नित्यम प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसीदति। वो कहते हैं कि यदि सदैव गाय प्रसन्न रहेंगे तो गोपाल भी प्रसन्न रहते हैं। गोषु नित्यम प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसीदति। तो नित्य रूप से गायों को हमें प्रसन्न रखना चाहिए, तब जाकर गोपाल या श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो गायों को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है? बहुत कोई कठिन बात नहीं है। तो यहां पर बताया गया है गवाम कंडूयनेन, कंडूयनेन मतलब खुजली करना। तो गाय को जाके थोड़ा खुजली करनी चाहिए, विशेष करके गल कंबल में, या कहीं भी बड़े प्रेम से हाथ फेरना चाहिए गाय के शरीर के ऊपर। अन्य जगह कहा गया है कि गाय के पीठ पे हाथ फेरने मात्र से प्रेम से हमारे ढेर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, एक बार केवल स्पर्श करने से गोमाता का। तो फिर यदि प्रेम से हम सेवा करेंगे तो कितना लाभ मिल सकता है। विशेष करके खुजली करना है ये बता गया है, कंडू या नेन उनको ये बहुत पसंद है। कानों में भी हम खुजली करते हैं तो वो आपके शरणागत हो जाएंगे। लेकिन हां ये भी एक सावधानी के दो शब्द कहने पड़ेंगे कि हालांकि गाय पूजनीय है और हमें संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान कर सकती हैं कृष्ण भक्ति के लिए, फिर भी क्योंकि वो पशु देह में हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब हम खुजली करने जाते हैं या स्पर्श करने जाते हैं तो कभी कभी उन्हें ऐसे भी लग सकता है, पता नहीं चलता है कि ये हमारे प्रति किस भाव से सामने आ रहे हैं, तो अचानक वो घबरा जाते हैं कि ये कौन अचानक हमारे सामने आ गया। इसलिए थोड़े सावधानी से जाना चाहिए, डर से नहीं लेकिन सावधानी से। हृदय में प्रेम होना चाहिए, साथ साथ थोड़ी सावधानी से जाना चाहिए। और जब हम मालिश कर रहे होते हैं गाय को या खुजली कर रहे होते हैं, खुजा रहे होते हैं उनको या पीठ पे हाथ फिरा रहे होते हैं, तो गाय के सिंग पे थोड़ा नजर रखना चाहिए, क्योंकि अचानक क्या होता है, कोई मच्छर काट डालती है, कोई हो जाता है अचानक, तो गाय या बैल अचानक अपना सिर घुमा लेती है। तो ऐसे सिर घुमाने से सींग कहीं लग न जाए, कभी कभी ऐसे भक्त थोड़े घायल हो जाते हैं, इसलिए ये भी बताना आवश्यक है। नहीं तो भावपूर्वक कोई बेचारे भक्त जाएं, ऐसे कई बार हुआ है, हमसे कई भक्त आके कहें हम कभी गाय के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो गए और गाय ने ऐसे सींग से मार दिया कि हम अभी नहीं जाएंगे। परंतु हमें ये गाय की समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या है। हमें सावधान रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि गाय के सामने कैसे जाना चाहिए। तो यदि सावधानी से जाएं तो गाय भी बड़े प्रेम से आदर पूर्वक और बड़े प्रेम पूर्वक हमसे संबंध रखेगी। जैसे मनुष्यों के भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं, कोई स्वभाव से चिड़चिड़ा आदमी होता है, कोई स्वभाव से बड़ा मीठा होता है, मधुर वाणी होती है उसकी, उसी तरह से गायों में भी ऐसे स्वभाव होता है। कोई गाय ऐसे होते हैं सामने जाएंगे तो बड़े प्रेम पूर्वक आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। कोई ऐसे होते हैं जो तुरंत आपको देखते ही बहुत गहरी सांस लेना शुरू कर देंगे या आपके सींग हिला देंगे। तो थोड़ा वैसे सावधान रह के गायों के स्वभाव को पहचान के हमें जाना चाहिए। और एक बार आपसे परिचय उस गाय का हो गया या बैल का हो गया तो फिर वो आपके मित्र बन जाएंगे। और ये इतना आनंद महसूस होता है इसमें कि जो भक्त गाय की सेवा नहीं करते हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो जाके प्रत्यक्ष अपने हाथों से सेवा नहीं करेंगे। जो रागानुगा भक्ति भी करना चाहते हैं, वैदिक भक्ति की बात छोड़िए, उनके लिए भी ये आवश्यक है। और भक्तों की बात तो दूर है, स्वयं श्री कृष्ण भी जब सेवा करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। यहां पर हमारी इतनी बड़ी गौशाला है, 380 गाय बैल बछड़े हैं, लेकिन हम में से अनेक भक्त नहीं जाते हैं, तो हमें जाना चाहिए, कम से कम गायों का दर्शन तो करना चाहिए। यदि हमें डर भी लगे कि हम उनके पास में जाएं, स्पर्श नहीं करें, लेकिन कम से कम दर्शन करने के लिए तो जाना चाहिए। कुछ उनको खिला तो सकते हैं, कुछ लड्डू खिला सकते हैं, कुछ तो चारा दिला सकते हैं भक्तों से वहां बातचीत करके। तो ये गायों की सेवा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि गायों को प्रसन्न रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न रहेंगे। बहुत सीधी बात है, हमें भक्ति में प्रसन्न करना है तो गायों को प्रसन्न करना अनिवार्य है। और विशेष करके जब हमारे यहां इतनी बड़ी गौशाला है, इतने सारे गाय हैं, यहां से है बाहर से, हम गाय के लिए दान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं किसका बजे ताकि दान मिल जाए गौशाला के लिए। वैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद ये भी बताते हैं, ये साधन भक्ति के जो 64 अंग हैं, उनमें जो दो अंग हैं विशेष करके वो गाय से संबंधित हैं। एक की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं और दूसरा है जब वो तदीय नाम सेवनम, जो श्री कृष्ण से संबंधित है उनकी सेवा करना, विशेष करके तुलसी महारानी, गंगा, गाय, वैष्णव, ये सब तदीय सेवा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सब की सेवा हमें करनी चाहिए। तो गाय की सेवा ये भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको अलग नहीं समझना चाहिए। और हम गाय को महत्वपूर्ण इसलिए समझते हैं कि ये श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम है गोपाल या गोविंद, और उनके धाम का नाम है गोलोक या गोकुल। गाय के पीछे इनके नाम रखे गए हैं। कुंती महारानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका नाम गोविंद भी है, क्योंकि आप यहां प्रकट होते हैं गो अर्थात गाय, द्विज अर्थात ब्राह्मण, सुर अर्थात देवता, इनके दुखों का हरण करने के लिए। आपका अवतार लेने का कारण ये है क्योंकि इन तीनों को पीड़ा देने वाले बहुत से दुष्ट लोग होते हैं इस जगत में, इसलिए इनसे इस दुख से राहत देने के लिए आप स्वयं प्रकट होते हैं। तो भगवान के लिए गाय, ब्राह्मण, देवता, भक्त इत्यादि इतने प्रिय हैं कि स्वयं वो उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो हमें भी इसी तरह उनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने प्रत्यक्ष वृंदावन में प्रकट होके हम सबको सिखलाया है कि हमें कैसे गायों की रक्षा करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह वो गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे और सायंकाल लौट के आया करते थे। और जब कालिया दमन की लीला हुई, आपको तो पता है कि श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किस तरह से किया, उनके फणों पर नृत्य करके। और यद्यपि श्री कृष्ण केवल उस समय 4 या 5 वर्ष के बालक थे, फिर भी श्री कृष्ण के जो चिन्ह है या जो चरण है वो इतने भारी लगे कालिया को, मानो कि अनेक वज्र टूट पड़े हैं उनके फणों के ऊपर। और अंत में हालांकि काली ने बहुत प्रयास किया श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए, परंतु नहीं सफल हो पाया और खून बहने लगा उसके मुख से, प्राय बेहोश होके मृत्यु के शैया पर प्राय मृत्यु तक पहुंच गया था कि जब नाग पत्नी आई सामने, उन्होंने प्रार्थना की, तब जाके श्री कृष्ण ने कृपा कर दी। ऐसे हिंदी में कहावत है कि जब किसी को ऐसे सबक सिखाया जाता है तो कहा जाता है कि उसकी नानी याद आ गई, ना ऐसे कहते हैं ना। तो कालिया को श्री कृष्ण ने ऐसी सबक सिखाए कि एक नानी तो क्या, अनेक जन्मों की नानियां याद आ गई होंगी। ऐसे सबक कृष्ण ने कालिया को सिखाया। इतना सब करने के बाद श्री कृष्ण का व्यवहार कालिया से कैसा रहा? रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के अनेक गुण हैं, उनमें से एक गुण है प्रियम वद, बड़ी मीठी बोली है उनकी। जब किसी का दमन करते हैं, किसी को हरा भी देते हैं, तो बड़े मीठी तरह से बात करते हैं, कभी किसी को अपमानित नहीं करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्ति की लीलाओं को प्रदर्शित करने के पहले भी, जब वो निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे, विख्यात थे, बहुत बड़े पंडित थे, और उनका सामना करने वाला वाद में या तर्क में कोई नहीं था, सभी डरते थे उनसे। लेकिन उनकी विशेषता ये थी, जब किसी को वाद में हरा भी डालते थे तो उनको अपमानित नहीं करते थे, ऐसे मीठे ढंग से उनको हरा डालते थे कि वो सामने वाला व्यक्ति भी उनके शरण में आ जाता था और उनका गुणगान करने लगता था। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का यह गुण है, अपने शत्रुओं के साथ भी वह ऐसी मीठी बात करते हैं। तो कालिया दमन के पश्चात श्री कृष्ण ने कालिया को भेजा कि यमुना छोड़कर तुम चले जाओ, रमणक द्वीप में तुम चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ, और फिर क्षमा याचना की श्री कृष्ण काली से। और एक सुंदर श्लोक है जो हम इसका पाठ हम करना चाहेंगे अभी। कृतव्यालिके पिनकुंडलींद्र त्वदा विधेया मई दोष दृष्टि प्रवास्यमानोऽस्मि सुरार्चितानां परम हिताद्य गवान हितस्य। वो कहते हैं हे कालिया, मैंने तुम्हें कृत व्याल के मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। व्याल का मतलब पीड़ा, बहुत कष्ट मैंने तुमने दिया है। हे कुंडलींद्र, कुंडलींद्र मतलब सर्पों के राजा, मतलब कालिया, हे सर्पों के राजा मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। त्वया विधेय मई दोष दृष्टि न दोष दृष्टि, तो हालांकि मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है फिर भी मुझसे असंतुष्ट नहीं होना, दोष दृष्टि मेरे प्रति नहीं रखना। हालांकि मैं तुम्हें भेज रहा हूं बाहर प्रवास्यमान असी, परंतु मेरे ये सब करने का प्रयोजन क्या था, क्या उद्देश्य था मेरा? परम हिताय अद्य गवाम कुलस्य, ये जो मेरे प्रिय गाय हैं सुरार्चिता नाम, जो देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं, इनके हित के लिए, इनकी रक्षा के लिए मैंने ऐसे किया है। हुआ क्या था, जब कालिया यमुना देह में रह रहा था तो वहां पे उसके विष के कारण सारा जल जो है वो दूषित हो गया था, विषैला हो गया था। तो अनेक गाय आए थे वहां श्री कृष्ण के, और उन्होंने ये विष का पान करके वो वहां पे गिर पड़े थे, कोई बेहोश हो गए थे, कईयों की मृत्यु भी हो गई थी। हाँ, श्री कृष्ण ने उनको पुनः जीवित कर दिया, वो तो दूसरी बात है, लेकिन नुकसान तो काफी हो गया था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे प्रिय गाय ऐसे घायल होके पड़े हैं, कोई मर गए हैं, तो उनको बहुत चिंता हुई, पर उन्होंने छलांग मार दी जल में और फिर कालिया का दमन किया। तो यहां वो बता रहे हैं कि देखो कालिया, मेरे गायों का नुकसान हुआ है, ये मैं सहन नहीं कर सकता, तुम मेरे ऊपर कुछ आक्रमण करो तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूं, लेकिन ये गाय है, ये निरपराधी है, निस्सहाय है, इसलिए इनके प्रति कभी कोई हमला नहीं करना चाहिए, इनका बुरा नहीं करना चाहिए। तो समय समय पर शास्त्रों में ऐसे ही कहा गया है कि गाय निरपराधी है, निस्सहाय है, और ऐसे निस्सहाय प्राणियों का और व्यक्तियों का की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। और प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे द्वारा जो रक्ष्य हैं, अर्थात जिनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, यदि उनकी रक्षा हम नहीं करते हैं तो हम दंडित होते हैं यमराज के दूतों के हाथों में। यदि जैसे पांच प्रकार के व्यक्ति हैं यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो रक्षा के योग्य हैं, एक तो है गाय, दूसरे हैं ब्राह्मण, तीसरे हैं वृद्ध, चौथे हैं स्त्री और पांचवे हैं बच्चे। इन पांचों की रक्षा होनी चाहिए, ये वैदिक सभ्यता है। और जब इन पांचों इन वर्गों की रक्षा नहीं होती है तो फिर जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है इनकी रक्षा के लिए वो दंडित होते हैं। मापदंड सभ्यता का ये है कि इन पांचों की रक्षा होनी चाहिए और श्री कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। और यदि किसी समाज में ये चीजें नहीं हो रही हैं तो वैदिक सभ्यता के तुलना में, वैदिक सभ्यता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही दंडनीय है, निंदनीय है ये। तो सारे समाज में जो अपने आप को सभ्य मानता है इन पांचों की रक्षा करना अनिवार्य है। आजकल ये देखा जाता है कि लोग अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। उसी तरह से ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करते हैं जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, उनके बच्चों की रक्षा भी आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। शीघ्र ही बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं कि वो बुरी आदतों में लग जाते हैं और आगे चल के जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हाथ के बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से गायों की भी रक्षा हमें करनी चाहिए। गाय भी हमारी माता है। गावो विश्वस्य मातरः। शास्त्रों में बताया जाता है कि सारे विश्व की माता गाय है। जब हमारी माँ हमारी माता बूढ़ी हो जाती है तो हम ये नहीं कहते अभी आप बूढ़ी हो गई अभी घर के बाहर चले जाओ, ऐसा नहीं कहते। तो उसी प्रकार से गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो कैसे हम बेच सकते हैं गाय को? गाय की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से गाय हमारी माता है, बैल हमारी पिता है। गाय माता इसलिए है कि वो हमें दूध देती हैं, और दूध विशेष करके गाय का यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में जब दूध शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमें जानना चाहिए कि यह गाय का दूध है, या घृत या घी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जानना चाहिए कि यह गाय के दूध से उत्पन्न हुआ घृत या घी है। तो दूध मतलब गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध का पान करने से व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो शुद्ध हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, जिसके द्वारा वो सूक्ष्म आध्यात्मिक विषयों को समझने की रुचि रख सकता है। प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं अपने ग्रंथों में, अपने प्रवचनों में, कि आध्यात्मिक ज्ञान यदि किसी समाज में नहीं होता है तो वो समाज उस समाज का पतन हो जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होना आवश्यक है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार जब हो तो व्यक्तियों को समझने की बुद्धि भी होनी चाहिए, वो मति होनी चाहिए, कृष्ण मति होनी चाहिए। यदि वो झुकाव न हो, वो रुचि न हो, वो बुद्धि न हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों को समझ भी नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गाय का दूध ये सबसे सात्विक आहार है, इसको गो रस कहते हैं। गाय के शरीर का रस है, ये बहुत शुद्ध माना जाता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। शास्त्रों में बताया जाता है कि आहार शुद्ध हो तब हमारा अस्तित्व शुद्ध हो सकता है। अस्तित्व शुद्ध हो जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति भी तेज और सूक्ष्म और शुद्ध हो जाती है, और जब हमारी स्मृति शक्ति इस प्रकार शुद्ध हो जाती है तो आध्यात्मिक विषयों को समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, जिससे कि हम आगे मुक्ति या मोक्ष के पथ पे आगे चल सकते हैं। तो गाय का दूध आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अति लाभकारी है आजकल, परंतु ये बहुत विकट समस्या बन गई है कि गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लोग आजकल भैंस का दूध पसंद करते हैं, क्योंकि ये चाय के लिए ज्यादा अनुकूल मानते हैं लोग, और गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा महंगा बन गया है। लोग आजकल गायों को पालते नहीं हैं। हाँ, किनका बजाय 500 रुपया भी लाइएगा, हम गंभीर हैं, हम ऐसे ही हल्का नहीं बोल रहे हैं, हम सचमुच बोल रहे हैं। आप लीजिएगा उनसे 500 रुपया दान गाय के लिए, ये हमने यूं ही मजाक के लिए नहीं कहा है। जिनका भी मोबाइल फोन बजा है कृपया गाय के लिए 500 रुपए दान निश्चित दीजिए आप। तो हाँ, गाय के दूध की बात कर रहे थे। तो आजकल क्योंकि लोग गायों का पालन नहीं करना चाहते हैं, ये तो बहुत लंबा विषय है और आज के समय में सारी बातें चर्चा करने के लिए शायद हमें समय नहीं मिलेगा, परंतु यहां भी हम देख रहे हैं कि आजकल गोचर भूमि नहीं रही और जगह जगह से लोग आजकल हिंदू परिवारों से भी गाय को बेच डालते हैं कत्ल खाने में। तो ऐसी विकट परिस्थिति के समय यदि कृष्ण भक्त गाय की सेवा या गाय की रक्षा नहीं करेंगे तो आगे क्या गुंजाइश है, क्या संभावना है कि गाय बच के रहेगी? तो यहां हमारे मंदिर में भी गौशाला है, तो यहां भी बहुत आवश्यकता है गाय की सेवा के लिए। तो अब सबसे निवेदन है कि आप भी जरा देखिएगा, ये हम सबके गाय हैं, कृष्ण के गाय हैं, कृष्ण बलराम के गाय हैं। कृष्ण बलराम जी यहां से इनका दूध पीते हैं रोज, राधा श्याम सुंदर गौर निताय इनका दूध पीते हैं। तो ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ऐसे कभी हमारे गौशाला में परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि जो भक्त देखभाल कर रहे हैं उनको तनाव आ जाए कि कैसे गाय की सेवा करें, कोई धन राशि की कमी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब अन्य चीजों के लिए हम इतना कुछ खर्च करने के लिए तैयार होते हैं तो गाय की सेवा के लिए क्यों नहीं करना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबका दायित्व है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मंदिर के प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, वो देख उनका सरदर्द है देखना कि गाय की रक्षा कैसी हो। हम सबका कर्तव्य है, ये रक्ष है हम सबके द्वारा। अभी हम लोग केवल ये चाहते हैं कि गाय का दूध क्यों नहीं मिल रहा है गौशाला से। हाँ, दूध का अभाव इसलिए है कि समस्याएं हैं गाय का देखभाल करने में, इसलिए हम सब यदि साथ देते हैं तो अवश्य गाय की रक्षा अच्छी तरह से हो पाएगी, सबको गाय का दूध मिल पाएगा। और शुद्ध गाय का दूध, अहिंसा दूध का पान हम करेंगे कृष्ण को अर्पण करने के पश्चात, हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी और आध्यात्मिक जीवन में हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। गाय एक ऐसे प्राणी है जिसके मूत्र और मय से भी, जिसके गोबर से भी इतना लाभ हो सकता है। गोमय वसती लक्ष्मी ही, गोमय में, गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। गाय का मूत्र भी बहुत शुद्ध माना जाता है, यहां तक इतना शुद्ध माना जाता है कि हम भगवान के मंदिर के गर्भगृह को भी हम स्वच्छ करते हैं गोमूत्र और गोबर से। वैसे जो पुजारी हैं, आप सब जानते हैं कि भगवान की सेवा करने के पहले स्नान करके जाना पड़ता है। यदि कोई लघु शंका आदि करता है उसके पहले स्नान करके जाना पड़ता है भगवान की सेवा के लिए। यदि किसी ने भोजन किया है फिर भी उन वस्त्रों में नहीं जा सकता भगवान की सेवा करने के लिए। तो इतना ऐसे कड़ा नियम होता है भगवान की सेवा करने के लिए। हम यदि शौच करके आते हैं तो स्नान करने के पहले नहीं जा सकते, परंतु गोबर और गोमूत्र इतने शुद्ध वस्तुएं हैं कि उनको, बल्कि भगवान को नहलाया जाता है। जब पूतना का वध किया श्री कृष्ण ने, तो ऐसे सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि गोबर का लेप लगाया गया, गोबर से तिलक लगाया गया श्री कृष्ण के ऊपर। माता यशोदा ने तिलक लगाया गोबर का, और गाय के जो चामर से या गाय के पूंछ से उनको फिर उनको हवा दिलाया गया कि हाँ, ये अशुभ चीजें सब खत्म हो जाती हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सबको सीखना चाहिए कि कैसे गोरक्षा की सभ्यता से वैसे हम सबकी रक्षा कैसे हो सकती है। इस सभ्यता को हम सबको सीखना चाहिए, कैसे गोबर का प्रयोग करना है, कैसे गौमूत्र का प्रयोग करना है, और बहुत सी चीजें हैं। तो ये वैदिक सभ्यता है। देखिए, सभ्यता के बिना, संस्कृति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। केवल गगनचुंबी अट्टालिकाओं में निवास करके हम सोचें कि हम भक्ति करेंगे, बहुत मुश्किल है। शहरी जीवन में बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी बताया करते थे, सरल जीवन ऊंचे विचार। जीवन को जितना हो सके उतना सरल बनाना चाहिए, और साथ साथ इस सभ्यता को, इस संस्कृति को हमारे जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। तब हमारे भक्ति के लिए बहुत अनुकूल ये परिस्थिति होगी। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गाय को, ब्राह्मण को मुझसे भिन्न समझता है वो दंडनीय है। तो इसलिए हमें गाय, वैष्णव आदि की अच्छी तरह से सम्मान करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करेंगे हम, और हमारे हरि नाम श्रवण कीर्तन आदि में हमें रुचि शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। वैसे समय हो गया, थोड़े प्रश्नों के लिए या टीका टिप्पणी के लिए हम समय छोड़ेंगे। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो, हाँ जी, माइक है पीछे, आप दे सकते हैं।
जैसे आपने बताया गाय की मतलब रक्षा का सबकी जिम्मेवारी है, परंतु आजकल सरकार जो है दिल्ली में खेलें हो रही हैं, विदेशी मेहमानों को गाय का मांस परोसने की इजाजत दी है, तो उसके लिए हम मतलब क्या मतलब रक्षा के लिए कैसे आगे आ सकते हैं?
हाँ, कम से कम हमें शुरुआत घर से करनी चाहिए ना। हम यदि बाहर जाके बहुत कुछ करने लग कहने लगे गोरक्षा के बारे में, अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में गायें हैं, उनकी पहले रक्षा होनी चाहिए अच्छी तरह से, उनकी सेवा अच्छी तरह से होनी चाहिए, तब जाकर हम अन्य गायों की बात सोच सकते हैं। तो यही हमारे कहने का अभिप्राय था कि सर्वप्रथम हमारे गायों के बारे में हम सोचें। जब ये भावना भक्तों में फैलेगी कि गाय की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, तब भक्तों में ये फैलेगी बात, फिर आगे चल के समाज में फैलेगी, फिर ये एक तरह की क्रांति भी हो जाएगी। हाँ, ठीक है ना? और किसी के कोई प्रश्न है, टीका है किसी के? और हाँ, माता जी जरा संक्षेप में कहिएगा, ठीक है? संक्षेप में, बिल्कुल।
प्रभु जी, हम इतने दिन से जो भी सुन रहे हैं संतों के मुख से सुन रहे हैं, और भगवान कृष्ण जी ने भी संतों को अपने से डबल माना है, तो हमें लगता है गाय की सेवा भगवान की सेवा से पहले संतों की सेवा ही अनिवार्य है। और शॉर्टकट और भी बोल दूं, भगवान कहते हैं जो मेरे संतों की सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो हमें लगता है भगवान के सामने जब हम संतों को प्रणाम करेंगे तो भगवान जी ज्यादा प्रसन्न होंगे उनकी साक्षी।
सही बात है।
तो हमें यहाँ बोला जाता है पाप पाप, अपराध अपराध, हमें बड़ा दुख होता है। हाँ। हमें क्षमा करना।
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, माइक यहाँ दीजिएगा, जरा माइक जरा देंगे आप?
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज।
हरे कृष्ण।
विविध ढंग से आपने हमको ये गौ रक्षा के बारे में बताया है कि शायद ही कोई इस क्लास में बैठा होगा जो गाय के प्रति श्रद्धा नहीं उसकी पनपेगी, लेकिन एक बात मेरे हृदय में बार बार आती है, जब हम सड़क पर चलते हैं तो जो वृंदावन की गौशाला में तो गाय जो है पूर्णतया सुरक्षित है, उनकी सेवा होती है, उनकी सेवा पूरी तरह से, उनको नहलाया जाता है, उनको अच्छी तरह से खाना दिया जाता है, खाद्य पदार्थ दिया जाता है, लेकिन जो सड़कों पर गाय चल रही हैं उनको देख के हमें बहुत दुख होता है, वो कूड़ा खाती हैं कूड़ेदान पर। यहाँ तक कि बालाजी आश्रम के पास ही मैं कहीं रहती हूँ, तो वहां पर उन्होंने एक हौदी बनाई हुई है जिसमें वो जूठन डाल देते हैं, और इतनी भीड़ लगी होती है वहां गायों की, वो जूठन खाती हैं सबका। ये देखकर हमें बड़ा हृदय विदारक लगता है। ये इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? मैंने एक दो बार उनको कहा संस्था को उनकी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है।
तो हाँ, ये तो समस्या बहुत विकट है और बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास तो ऐसे कोई तैयार उत्तर तो नहीं है, इस समस्या का तो समाधान हमारे पास तो नहीं है। हाँ, इतना ही है, जैसे हम पहले दिए हुए उत्तर को हम दोहराएंगे कि शुरुआत करते हैं हमारे गायों से, आगे सब कुछ हो जाएगा। भक्तों से शुरुआत होनी चाहिए। हम सब अपने गायों की रक्षा करेंगे, अच्छी तरह से सेवा करेंगे, एक आदर्श गौशाला हमारे लिए बनाएंगे, तो फिर आगे चल के हम बहुत कुछ कर पाएंगे। जितने भी वृंदावन की गायें हैं वो सब उनके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये हमारी चेष्टा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे।